शास्त्र, इनके प्रति श्रद्धा रखना ये हमारी धर्म की परंपरा है और कुल की परंपरा है कि व्यसन नहीं करना, जिन्हें भगवान के रोज दर्शन करना, रात में नहीं भोजन करना, ये दोनों परंपराएं मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये सतत भक्ति कहलाती है, ये भी दान है, ये लौकिक दान है, ये पद्धति की गड़बड़ा दी, दोनों पद्धतियां गड़बड़ा। और दया भक्ति जिसको करुणा दान कहते हैं, किसी भी जीव पर दीन दुखी को देखकर जो हमारे मन में दया भाव आती है और हम अपना द्रव्य जो हमसे बनता है वो हम उसे दे देते हैं, वो दया भक्ति कहलाती है। ये तीन प्रकार के दान लौकिक दान के, इनसे हमारा मन प्रसन्न होता है, हम परोपकार की भावना बनाने से और पुण्य का अर्जन करते हैं। लेकिन इस तरह के दान से कर्मों की कोई निंदा नहीं होती। लेकिन जब हम रत्नत्व की साधना में लगे हुए त्यागी व्यक्ति जनों की सेवा में जुट जाते हैं, उनके लिए अपनी धन संपदा का उपयोग करना शुरू करते हैं, तब उनसे हमें शिक्षा मिलती है उस मार्ग पर चलने की, हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती उसकी वजह से और हमारे कर्मों की निद्रा भी होती और उनका उपकार होने की वजह से हमारे पुण्य का अर्जन भी होता है। अनुग्रहार्थम स्वस्था की सर्वोदानम दीदी ग्रह दात्री पात्र विशेषा सब विशेषा, दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने और जो वास्तविक अलौकिक दान है, पारलौकिक दान है, इसकी चर्चा करी। इस चर्चा को आज हमको करना था, ये जो बनने की है उसको पुराना रिपीट कर लिया है। हम जो पारलौकिक दान दें वो पारलौकिक दान में हमें विचार करना पड़ेगा, पात्र और अपात्र का विचार करें, करुणा दान में पात्र अपात्र का विचार नहीं करना। हमें जिसके ऊपर दया आ गई, जिसके ऊपर हमारा मन हो गया उसको हमने दे, उसमें कौन पात्र है कौन अपात्र है इसका हम विचार नहीं करेंगे, तो हम कहां विचार कर सकते हैं, दया आ गई दे दिया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो हमारी दया का दुरुपयोग कर रहे, तब फिर हम नहीं देंगे। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग फिर अगर किसी को देख लेते हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर सबके भीतर होता है, वो देख लिया तो फिर उस पर बार बार उंगली रखेंगे तो तकलीफ दायक है। आपने देखा कि हम बहुत संवेदनशील है, आपने देखा कि हम दयालु हैं, तो फिर आप जब चाहे तब हमारी उस दया को भुनाने में, तो ये ठीक नहीं है। तो एक बार तो हमने दयापूर्वक दे दिया, फिर दूसरी बार जब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई विश्वासघात कर रहा है तो हमारे अंदर दया ही नहीं आएगी, फिर वो दया से दिए गए दान भी नहीं किया। ऐसा मैंने देखा एक जगह पर, मैं वहां गर्मी के दिनों में था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि महाराज मोहल्ले में और सब जैन लोग हैं अधिकांश लोग, क्या हुआ कि वहां पर एक कबूतर का छोटा सा बच्चा और
ये पाप मम्मी का हुआ है
मरना चंद था, तो उसको पानी पानी पिला करके और दुरुस्त कर दिया, दुरुस्त कर दिया और एक जो बच्चा था उसके हाथ में था वो, तो उसके कहा कि देखो तुम उसको और ये देंगे और किसी ने उसको एक रुपये दे दी, किसी ने दो रुपये दे दी। आप उसको लगा अरे वाह, अगर मैं इस तरह से
अमाउंट जिसमें से काटा इन्होंने
दो चार दिन के बाद, फिर वो ऐसे ही अब तो अपने हाथ से उस कबूतर को पकड़ करके और थोड़ा सा घायल करके लेकर जाए, ये ऐसा हो गया। इसके लिए ठीक करना चाहो तो इसके लिए कुछ पैसे दो रुपए, अब तो लोगों ने ज्यादा दिन इसकी
घटना
बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा करते हैं, उनका कुछ चीज कोई कोई चीज मालूम कर जाए तो फिर बाद में टेस्टाइज करके ही लेते हैं, वो करुणा नाम भी क्यों रहेगा, वो तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो गई। करुणा दान में हमारी अपनी संवेदनशीलता, हम भले ही उसमें पात्र पात्र का विवेक नहीं करते हैं लेकिन सावधानी रखते हैं कि ऐसा ना हो कि अपात्र के पास हमारा धन पहुंच जाए। लेकिन जो पारलौकिक दान है उनमें तो पात्र का विवेक आवश्यक ही है। तीन तरह के पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम और जगन, जो सदाचारी है और सत्य देव निष्ठा रखते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, जो उत्तम पात्र हैं, जो सत्य गुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, विकरागता में श्रद्धा रखते हैं लेकिन अभी महाव्रतों का पालन नहीं करते और थोड़े बहुत व्रतों का पालन करते हैं, अनुव्रतों का पालन करते हैं, सबसे मध्यम पात्र है और जो अभी कोई व्रतों का पालन तो नहीं कर पाए, सत्य युग शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे सब जघन्य पात्र। इन तीन के लिए ही दान की प्रक्रिया लिखी। जो वितरागता पर श्रद्धा करे उसे भी दान दे, जो वितरागता पर श्रद्धा करने के साथ साथ स्वयं भी वितरागता के मार्ग पर भले आंशिक रूप से चले उसको भी दान दे सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से वितरागता का पालन करने का लगा हुआ है वो तो उत्तम पात्र है, उसे भी दान दे। इनके अलावा जो कुपात्र हैं और अपात्र हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन कुपात्र है? जो सत्य देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो नहीं रखता लेकिन थोड़े दस नियम इत्यादि का सदाचार का पालन करता है, ध्यान रखिए ये परिभाषा। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जो महाव्रती हैं और सत्य देवगुरु शास्त्र पर जिनके सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वे भी कुपात्र हैं, कृपा करके ऐसी परिभाषा न बनाए, ये नई परिभाषा बनाएगी। परिभाषा दोस्ते लिखी है कि जिनकी वितरागता के प्रति श्रद्धा नहीं है लेकिन सदाचारी है वे कुपात्र। अपात्र कौन? जो न सदाचार का पालन करते हैं न जिनकी वितरागता के प्रति श्रद्धा है, जो सदाचारी नगतनी है वे अपात्र। इस तरह हम कुपात्र और अपात्र से बच करके सब पात्र को ही दान दें, ये विवेक भी होना चाहिए। आज वर्तमान में ऐसे ही समझ में आएगा, वर्तमान में मजदूरी में हम किस किस को दान देते हैं, हमारा कितना पैसा मांसाहारी के पास पहुंचता है, कभी विचार किया? कितना पैसा हमारा छोटे कार्य करने वाले के पास पहुंचता है, कभी विचार किया? जबकि हम जानते हैं लेकिन इसके बावजूद हम ज्यादा आपसे छोड़ करके कहेंगे तो आपको बुरा हो सकता है, व्याख्यान देंगे लेकिन कर तो यही रहेंगे बाधे के लिए, वो जहाज के बाद बाधे के लिए कहेंगे वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कभी सोचा एक उदाहरण है और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति की दुकान से सामान खरीद रहे हैं जितनी आप अंडे बेचे जा रहे हैं, इसके आप समझ सकते हैं इसका मतलब है क्या, उसके अंडों का समर्थन है। ऐसी होटल में जाकर के भोजन खरीद रहे हैं जहां की मांसाहार बन रहे हैं, आप उसे पैसा दे रहे हैं, आप जानते हैं ये मांसाहार करने वाला है, ये दुराचरण करने वाला है, उसके यहां से आप सामान खरीद रहे हैं, मानिएगा क्या आप इस तरह से अपने हाथ से जान बूझ कर अपना अहित कर लें? ये अपात्र को समर्थन देने का काम है। इसलिए ये चीज भी जानने की अकेले मुनि महाराज को दान देने अकेले मात्र से काम नहीं करने वाला, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुनि महाराज को तो दान दिया है, वो सर्वपात्र को दान देने से आपको पुण्य का अर्जन हो, कर्मों की निद्रा भी होगी, लेकिन साथ साथ अगर आपका हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक तरफ गौशाला का टीका काटते हैं दूसरी तरफ उद्घाटन की नहीं चाहिए।
हेलो,
क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को, पर उनको हम आराम से और अपने यहाँ पर अच्छे से आमंत्रित करते हैं और उनको माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको हम नेताजी कहते हैं। दोष मार्गस्थ नेताराम बेटा जरूर है लेकिन हम तो मानते किसी और को ही नहीं है, सभा में अगर नहीं आए तो मजा ही नहीं आता। जरा विचार करना, मैं तो कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन अब उनको बैठ के विचार कर रहे हैं, आपके साथ मैं विचार कर रहा हूं क्या कर रहे हैं अपन, जरा सोचिएगा दान की प्रक्रिया को हमने किस तरह से चीज कर दी और हम किस किस चीज का समर्थन कर रहे हैं। हमें इस बात की सावधानी रखनी कि जो भी हम अपने जीवन में दूसरे के लिए देते हैं उसका समर्थन करते हैं वो सब हमें सदुपयोग में जा रहा है या नहीं जा रहा। पुराने लोग बैंक में पैसा जमा करना पसंद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा पता नहीं किस फॉर्म में जाएगा, प्लस किस फार्म हाउस में योग में जाएगा, किस फॉर्मेट के लिए योग में जाएगा, पता नहीं किस बेईमानी के धंधे में मेरा ये पैसा लगेगा। इसलिए अपने किसी साधनी को दे देते थे कि थोड़ा सा ब्याज दे देना और अपनी अपने अच्छा धंधे में लगाए रखना उनको। इस तरह ये क्या चीज थी, ये उनका सोच था कि मेरे द्वारा कमाई गई संपत्ति और वो मिसयूज न हो। ये बिल्कुल एक लॉजिक की प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे भी छिपा हुआ परमार्थ। एक व्यक्ति है मुझे मिले थे, मैं आपको इस तरह से कह रहा हूं कि आप सोची थी ऐसे ही करना चाहिए। वो मालूम 2 किलोमीटर दूर भी जाकर के और खरीदने के वहीं से सामान चाहे 2 रुपए ज्यादा का मिले जो कि शाकाहारी थी। वो कहते हैं कि मैं तो वितरकता में श्रद्धा रखने वाले और शाकाहारी व्यक्ति के यहां से सामान खरीदता हूं, अन्य कहीं से सामान भी नहीं खरीदता हूं। वो मेरे से 2 रुपए ज्यादा भी देने का तब भी मुझे लगता है कि मेरे 2 रुपए बर्बाद नहीं हुए एक अच्छे आदमी के पास। बताइए सोच का ढंग देखिएगा। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इस दान की प्रक्रिया को लाएंगे तो ही हमारा दान सार्थक होगा, वरना तो दान तो बहुत देने वाले लोग दे रहे हैं, कितना कितना दान दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी संतोष। दान दे मन हरक विषय को, हरक नाम की चीज तो बिल्कुल भी नहीं आती। हरक तो सिर्फ उतनी देर आधा व्यक्ति को नाम बोला जाता या कि जब जब पटिया पर लिखा हुआ देखते तब तक हर्ष होता है, बाकी तो बिल्कुल हर्ष नहीं होता। बाकी तो अगर महावीर जी में हमने एक कमरा बनवाया है तो हम पहले नंबर फोन करेंगे कि कब हम आ रहे हैं और हमारा वो कमरा मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी आपने दान नहीं किया है, आपकी संपत्ति है ना, अभी तब तो आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि उसी कमरे पर रुकूंगा मैं, अभी आपको पोजेशन है उस पर, आपने सौदा किया है, आपने डोनेशन नहीं किया, ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में तो बहुत फर्क है। इस तरह के दान से कोई लाभ नहीं होने वाला, ये सावधानी रखने की थी। हम पात्र को दान दें लेकिन प्रति उपकार की भावना से नहीं, और दाता के 7 गुण हैं उनका भी ध्यान रखें। पात्र के गुण देखना तो जरूरी है कि पात्र सम्यक दृष्टि है कि नहीं, मैंने जब नियम संयम का पालन कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो दान देने वाला हूं उसके अंदर पात्रता है देने की नहीं। जो लेने वाला है उसकी पात्रता तो ठीक है, लेकिन मेरी देने की पात्रता है कि नहीं, मेरे पास कोई गुण है कि नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने तो दाता के भी 7 गुण कहे कि देने वाले के अंदर भी 7 गुण होना चाहिए, श्रद्धा होने को, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग का दान है वो श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, लौकिक दान दयापूर्वक दिया जाता है, पारलौकिक दान श्रद्धापूर्वक दिया जाता। मुनि महाराज पर दया करके उनको हार मत देना, सफा करके घूमते हैं 2 दिन हो गए हैं, दया करके दे दो, नहीं श्रद्धापूर्वक उनके लिए दयापूर्वक नहीं हो तो करुणा दान है जो दयापूर्वक दिन दिन दुखी को दिया जाता है। इसलिए जब भी पारलौकिक दान होगा श्रद्धापूर्वक, पहली क्वालिटी है दाता की कि वो दान दे तो श्रद्धापूर्वक दे और भक्ति बनी रहे। भक्ति के मायने और श्रद्धा के मायने दोनों साथ क्या है, क्योंकि श्रद्धा के मायने हैं कि पूरे सम्मान के साथ हमें दान दे, और भक्ति के मायने हैं दान की प्रक्रिया होते समय हम वहीं उपस्थित रहें, आहार दान चल रहा है, महाराज बहुत अच्छे पढ़ाए आप, पूरा सम्मान पूरे भाई संभालो, आप आहार करवाना हम दुकान में एक रात लेकर के मैं दूसरा काम है। जब तक वे हैं तब तक हम उनके पास रहेंगे, उन्हें उनके स्थान तक छोड़ने जाएंगे, ये भक्ति मिला श्रद्धा भक्ति फिर विवेक। विवेक तीसरे नंबर पर रखा हुआ है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। विधि व्रत दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, दान में विशेषता तो जो दिया जा रहा उससे आएगी, उनके उपयोग में आने वाली चीज दांत तो है नहीं और चने देवा, तो ये वाला दान नहीं कहलाएगा। दान तो वो कहलाएगा जो उनके लिए उपयोग में, इसलिए विवेक रखना पड़ेगा। अभी अभी पानी लिया है अभी ठहरो रस मत लो, अभी अभी दूध पिया है नहीं रस ले लो, नहीं दूध के बाद रस कैसे पी, ये विवेक। उसमें लिखा हुआ है कि ठीक ऐसे ही आहार दान देता है एक शावक, जैसे कि कोई माँ अपने नहीं बोलने वाले छोटे से बच्चे को भोजन कराती है तो वैसे शाम तक ध्यान रखती है क्या देना है, उसने क्या खा लिया और उसको कितना और देना है। ये तो जिस करेगा कुछ और मांगने की, पर उसको वो नहीं देना है जो अच्छी हो पौष्टिक हो, वही देना। जैसे ये ध्यान रखती तो वहां पर हर आहार देने वाला ही हर पांच माता हाथ है और भोजन करने वाला एक, जो इतना बड़ा होने के बाद सालो भी वो बालक पर है तो क्या कुछ नहीं होता है चीज चाहिए कि वो चाहिए नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं चाहिए किए थे, बस नहीं चाहिए किए तो कह सकते हैं लेकिन वो लोग इसलिए प्रक्रिया में विवेक आवश्यक है। चौथे नंबर अलोकता, लोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए देने वाले को, अरे हमने बना तो लिया थोड़ा सा लेने महाराज बाकी हमें बचा रहे भाई लेकर चले जा रहे महाराज, तो ऐसा भाव ना आता नहीं जावा को वो तो ये लगता कि देखो दिया, लेकिन देखो जब अपन ने दंड कुमार की कथा सुनी थी महाराज से तब शुरू में दंड कुमार के आखिर कुंड के क्या भाव थे कि महाराज आप तो जाओ थोड़ी सी खा लो थी तो फिर हमें खा लेने की हमारी मताई दे रही कि जब तक महाराज ने कहा जब तक हमें मिले इसे तुम जल्दी आ जाओ या थोड़ी ले लो बस हमें दूरी खा मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे महाराज को आहार देने लगा वैसे वैसे मन में विचार बदले कि हमें नहीं चाहिए महाराज पूरी दे अब तो यही ले रहे मैं तो तृप्त हो गया। उसकी वजह से उसे पुण्य का मन हुआ था, पहले तो खोटे पड़ना अनुग्रता यानी हमें उस समय और जो सामग्री हम दे रहे हैं दान देने वाली सामग्री के प्रति लोग जागृत नहीं होना और लोग जागृत हो जाता है अपने दृष्टि को दे देते हैं तो बात तक में कहती रहती है शिकायत तो भूल नहीं कहती है तो मजा इसी कहती है तो इसका मतलब है कि दी हुई चीज के प्रति आसक्ति बने हुए अभी लोग गया नहीं है, वे रुपया गिनते हैं अभी अपन गिन गिन करके देते हैं, हमने 10,000 दान दे दिए 10,000 दान दे दिए तो दे दिए 10,000 रुपए गए बाकी ये तो वैसे किया नहीं लेकिन अभी भरे में 10,000 गए थे 10,000 के प्रति लोभ है व्यक्ति ने 10,000 तो दे चुके पर अभी हृदय में उसके प्रति लगाओ ये लोभ जागृत नहीं होना चाहिए ध्यान रखें। अयोग्यता ये दाता का गुण है और फिर उसके बाद कहते हैं क्षमा सबके प्रति उस समय जब आहार दान दे क्षमा भाव करें और फिर कहते कि संतोष जो भी हमें प्राप्त हो गया है उत्तम अंतिम जगन जो भी पात्र सबसे पहले तो भावना यही भावे जब श्रावक जाते हैं आते हैं श्री के पास में तो सबसे पहले भावना क्या आते हमारे चौके में आचार्य महाराज आ गए, चलो कोई बात नहीं अब आचार्य महाराज तो सामने निकलिए मुस्कुराते हुए अभी भी समय सागर बड़ी भी आ जाए समय सागर जी भी कर गए उनसे और चोटी मारे आ जाए लेकिन नहीं तो महाराज निर्मल जी ने उनको हाथ चंद्रमार्ग हो तो भी महाराज आ जाए भव्य सागर की तो हो जाए क्षमा सागर आ जाए जो बेटा बेटा वाले महाराज फिर ऐसा मन में आता था वे भी निकल गए अब चलो गुरु जी महाराज आ जाए तीलक जी आ जाए चुल्लक जी आ जाए माता जी आ जाए त्यागी व्यक्ति कोई मिल जावे जो मिल जावे लेकिन पहले तो उत्कृष्ट भावना भरेगा उत्तम पात्र मिले उत्तम पात्र नहीं मिले तो मध्यम मध्यम नहीं मिले तो जगन इस तरह क्या सब जो मिल जावे उसमें संतोष ये संतोष और इतने ही नहीं आगे मुझे इस दान से वो भूमि यदि स्वर्ग का वैभव मिले ऐसी आकांक्षा भी नहीं करना यदि इस लोक में मुझे यश ख्याति मिले दान देने से ऐसी आकांक्षा भी नहीं लेना ये सब संतोष के अंतर और अंत में कहते ईर्ष्या द्वेष और मात्सर्य न होना दूसरे दाता से ये तो बहुत कठिन चीज है सबसे कठिन पहले दूसरे और तीसरे विश्व युद्ध तक के लिए ये कारण बने जब पूछा गया शायद वर्णनाथ का से पूछा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध हुआ उसका कारण क्या था तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ईर्ष्या तो फिर किसी ने कहा और दूसरे विश्व युद्ध का क्या कारण था तो उन्होंने कहा जैसे जिससे कोई जब ईर्ष्या ही दूसरे विश्व युद्ध का क्या कारण था तो बोला कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या कारण होगा क्योंकि जेलसी एंड जेलसी ईर्षा ईर्षा और ईर्षा, इतना बड़ा है ये सबसे सबसे बड़ी कठिन चीज है। दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाने का नाम ईर्षा है। क्योंकि दाता दूसरे दाता के गुणों को सहन करे, ईर्षा न करे। अरे उनके यहाँ पर तो पहले दिन हो गए थे, है तो है हमारे दस में दे रहे हैं। दी तो रहा है दान, लेकिन मन ही मन ईर्षा करता। इतना ही नहीं, और कोई दाता देने के लिए आ जावे, अब देखो तो हम तो सुबीर से बना रहे, तो हमें देवी नहीं मिलता उसी और इतने जने आ गए, हम तो नहीं जाते उसमें देवे जीवन का कौन है। नहीं, इस तरह अगर भाव आते हैं तो ये सब दान की प्रक्रिया को दूषित करने वाले। बहुत सावधानी की बात है भैया, लिखा तो इतने ही है आचार्य भगवंतों ने, वो हमारे अपने संभाल के लिए। दान देते समय दूसरे दाता को मास्टर ही नहीं करना, इनको तो चार चार देने मिल गए, मुझे तो एक मिला। अरे बच्चों को देखो, एक पानी पानी मिला हमें, पानी जैसे कुछ भी नहीं, एक जिला में क्यों माता लग जाए सबसे पानी की किसी मर जाए, रोटी रोटी आगे निकालो बैठे गई है, हमें पानी में नहीं मिला। ऐसे विचार नहीं आने का, ये सब दाता की कमजोरी मानी जाती है। सात गुण इस तरह से जाता के हो, फिर देखिए कितने उत्साह के साथ बच्चों का कह रहा था कि उनसे एक प्यास पानी दिलवा दो, और फिर देखो बाहर जाकर के उनका उत्साह देखिए, तो निभाओ देखिए फिर से डाय में लगे, फिर लगे हुए फिर आएगा नंबर, फिर देखेंगे फिर पान, उनको ये नहीं है कि वो ये फिर आगे उनका फिर आगे, ये आनंद लेते दान की प्रक्रिया तो आनंद देने। हमें इस तरह यदि दान की प्रक्रिया को हम करते हैं, चाहे वो आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, चाहे आवास दान हो, आज आवास दान के नाम पर अपन कमरे बना देते हैं, कमरे बना देने का नाम आवास दान नहीं भैया, दूसरे को अपने प्रति निश्चिंत करने का नाम आवास दान है। हाँ, अभय दान, अपने पड़ोसी को निश्चिंत कर देना कि हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं है। आप तो वो डरते ही रहता है, क्या पता नहीं कब क्या हो गया, कौन सी चोट पहुंचा है। हम अपने सावरणी को अपने जीवन से निश्चित नहीं कर पाते हैं, अगर ये निश्चितता दे दें उसके लिए तो ये बहुत बड़ा दान है, अभय दान। अकेले कमरे बना देने से अभय दान नहीं होता, अभय दान तो हृदय में जगह देने से अभय दान, हृदय में जगह अगर हमारे है और हमारे पास पैसा नहीं है मान लो कमरे बनवाने के, तब भी अपन कहते ना कि भैया हमने तो इसका उदाहरण नैना देवी में देखा था 1978 में, जब शाहू श्याम जी थे, अब तो भी शांति तो पहले ही चले गए थे, उसके बाद श्याम जी आए उस समय, आज मैं तो ग्रस्त में था उस समय, तो आचार्य जी के दर्शन के लिए आए थे और सारे कमरे वहां तो थोड़ी सी जगह, उतना क्षेत्र का विकास हो ही नहीं था 1978 में, आज का नैना देवी तो बिल्कुल अलग है, 1978 का देख के आप तो कुछ और ही बात थी, जब पहला चतुर्मास अचय जी का नैना देवी में हुआ था, ऐसी पर्तियां बनी कि ये तो बड़ी मजबूत और पक्की बनी हुई है, उनमें तो कुछ भी नहीं था, और उसी में जो है लोग रुक जाते थे और थोड़ी सी ऐसी ईटें रखेंगे वहीं चप्पा लगा देंगे ऐसे करके, और कुछ कमरे थे वो सब पहले से भरे हुए थे, और बाबू जी आ रहे हैं उनके लिए कमरा, उनके तो यहाँ इतने बड़े बड़े शेयर है, उनके लिए जरूर होना चाहिए, लेकिन दूसरे को कैसे कहें कि आप कमरा खाली कर लो, सब पहले से भरे हुए, अब सब घबरा रहे हैं कमेटी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जो होगा जैसा होगा, उन्हें दान देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है अगर क्षेत्र से, तो पहले से बड़ी व्यवस्थाएं हो जाए, बहुत पूरी डाले पूरी का कमेटी आगे पीछे हो जाए, और एक गरीब आदमी का होते कोने में डर हो, उन्होंने पूछे ना वो तीन दिन से दर्शनों को आओ, और बड़ा आदमी दान क्योंकि जिससे मिलना है ना उसके आगे पीछे, आपके भोजन हो गए, आप कहाँ का रुके हैं, आपको कैसा कहें, और कोई व्यवस्था तो नहीं, यहाँ पर कैसा लगा आपको, हमने हमारी ये योजना है, हमारी योजना सब बताने में लग जाए, यही तो देखते हैं अपन, यही तो है दान आजकल का वर्तमान में है ना। अब वो आए, अब क्या करें।